नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से पूरे दिल से स्वागत है मेरे शो में, जिसका नाम है सुनहरी यादें, मेरे यानी अभा के साथ। प्यारे दोस्तों, कहानी के पहले पार्ट में हमने ये देखा कि संयुक्ता और उसके जैसे न जाने कितने ही युवाओं के मन में कितनी उथल पुथल मचती है, कितने परेशान होते हैं अपनी नौकरी के पहले दिन, एकदम भूकंप। शायद कुछ ऐसा ही आपने भी एक्सपीरियंस किया हो, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। अब तक आपने सुना कि कैसे संयुक्ता ऑफिस में बोर हो रही थी, पर वो एकदम परफेक्ट सेक्रेटरी का कर्तव्य पूरा करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही उसे वो किस्सा भी याद आता है जहाँ उसकी फ्रेंड यानी रंभा को उसके बॉस की वाइफ ने ऑफिस से निकाला था शक के आधार पे। अब आगे सुनते हैं। संयुक्ता से हर गई ना बाबा, वो बस से ही आएगी जाएगी, बॉस गाड़ी में लिफ्ट देगा तो भी नहीं लेगी। लेकिन बॉस को मना कैसे करेगी, किसी उपाय से टालना पड़ेगा, पर फिलहाल वो तो बुरी तरह से बोर हो रही थी। फिर उसने फोन को देखा, दोनों फोन शालिनता के साथ चुप थे। जैसे शहर के सारे लोगों को मालूम पड़ गया था कि मिस्टर बजाज केबिन में नहीं है। उसका जी किया वो दरवाजे का पर्दा जरा खिसका कर शीशे के उस पार देखे कि हॉल में क्या हो रहा है। वो धीरे से दरवाजे के पास गई और वैसा ही किया। पूरे हॉल में मालूम चिल्लम पो मची हुई थी। शीशे की इस पार कोई आवाज नहीं थी, मगर लोगों के हिलते होंठ बता रहे थे कि वे बातें कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी चेयर पे बैठ के काम भी कर रहे थे, पर उनकी संख्या कम थी। सुबह आते हुए उसने जो व्यवस्थित और अनुशासित दफ्तर का माहौल देखा था, वो बिल्कुल बदला हुआ था। उनमें से कुछ बार बार केबिन की ओर उंगली दिखाकर एक दूसरे को कुछ बता रहे थे। क्या बता रहे होंगे? शायद कमरे में बॉस की सेक्रेटरी अकेली है, खूबसूरत है, ऐसी ही बातें करते होंगे। उसने धीरे से पर्दा छोड़ दिया। पर्दा अपने स्थान पर व्यवस्थित हो गया। हॉल की भीड़ बाहर ही छूट गई और वो केबिन में फिर से अकेली हो गई। कुछ देर चेयर को देखती रही, उसकी बाह पकड़कर खड़ी रही, फिर सोचा, भाग जाऊं क्या यहाँ से? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा यहाँ रुकने का। फिर उसे याद आया कि उसने कैसे अपनी माँ को मनाया था। पार्थ अंकल ने तो इतना भी कहा था कि तुम्हें बॉस के साथ टूर पे जाना पड़ सकता है। इससे उसे कोई आपत्ति नहीं हुई, पर उसकी माँ थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही कुनमुनाई थी। संयुक्ता ने माँ को समझाया था और यकीन दिलाया था कि उनकी बेटी कोई कमजोर लड़की नहीं है, अपने सामने आए हर स्थिति का भली भांति वो निपटारा कर सकती है। दूसरे सभी के साथ उल्टी सीधी बात हो ही, ये जरूरी तो नहीं है, वरना ऑफिस में सेक्रेटरी के पद पे लड़कियां होती ही नहीं, जबकि इस पद पर अधिकतर लड़कियां ही काम करती है। 5 बज गए, दफ्तर का समय खत्म हो गया, पर फोन की घंटी एक बार भी नहीं बजी। दफ्तर खाली होने लगा। उसने थोड़ा सा पर्दा खिसकाकर देखा, सभी एक बार केबिन को देखते, थोड़ा सा मुस्कुराते और मुड़कर चले जाते। उसने पर्दा छोड़ दिया। उन्हें इस तरह केबिन की तरफ मुस्कुराहट फेंक देखते हुए उसे थोड़ा घबराहट हुई। दिल एक बार असंभावित हुआ और धड़का। तभी दरवाजा खुला और चपरासी अंदर आ गया। आप नहीं जाएंगी? नहीं, साहब ने रुकने को कहा है, संयुक्ता ने कहा। इसके उत्तर पर चपरासी ने नीचा सर कर लिया और धीरे से मुस्कुराया और बाहर निकल गया। बाहर उसके टूल खिसकाने की आवाज बंद होते दरवाजे के अंदर आई, यानी वो तब तक रुकेगा जब तक वो रुकेगी। लेकिन सभी क्यों धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे? उनकी इस मुस्कुराहट का क्या अर्थ है? दिल एक बार फिर से धड़का, घबराहट थोड़ी और बढ़ी। संयुक्ता ने स्वयं को संभालने की कोशिश की, संयत होने की कोशिश की और फिर जाके चेयर पे बैठ गई। वो अकेली थोड़ी ही है, वह जब तक रुकेगी चपरासी भी रुकेगा। लेकिन चपरासी के रुकने के ख्याल से एक बार फिर डर गई। अगर कहीं चपरासी ही बदमाशी पे उतर आया तो? दिल जोर से धड़कने लगा। क्या करे वो, क्या चली जाए? उसका हाथ अपने पर्स की ओर बढ़ा लेकिन ठहर गया। बॉस ने रुकने को कहा था और आज पहला दिन है, पहले ही दिन अवज्ञा कर दे। लेकिन 5 बजने के बाद रुकना, वो सेक्रेटरी है, उसके दफ्तर के नियम बॉस से ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो क्या गलत बात भी मान ले वो? नहीं नहीं, ऐसा क्या होता है, उन्होंने रुकने को कहा है, हो सकता है किसी मीटिंग में हो, आकर तुरंत अपनी फाइल पे साइन करने लग जाए या कोई डिक्टेशन ही देने लग जाए, वरना रुकने को क्यों कहती? और वह इतनी जल्दी घबराने लगी, माँ को तो कितना समझाया था पर खुद का दिल चूहे सा। इसी उधेड़बुन में उसने आंखें बंद कर ली। वो बैठे बैठे थक भी गई थी और फिर चेयर पे अधलेटी होके वो कुछ सोचने लगी। वो बंद किए हुए आंखों से अजीब से डर से गुजर रही थी। उसकी सोच अनजाने डर से काफी परेशान हो रही थी। वे सोच जंगलियों की तरह अनवरत हो रहे थे। फिर वो सोचने लगी कि शायद ये उसका भ्रम हो। तभी अचानक उसे लगा कि कोई आवाज दे रहा है कहीं दूर से, पर वो आवाज दूर से नहीं थी। उसकी आंखें खुल गई। चपरासी उसे आवाज दे रहा था, मैडम फोन देरी से बज रहा है। फोन की घंटी भी बज रही थी। लगातार घंटी बजने की आवाज सुन चपरासी अंदर आया कि मैडम फोन क्यों नहीं उठा रही है। उसे सोता पाकर उसे वो आवाज देने लग गया। वो पसीने से भीगी हुई थी, सांसें तेज भाग रही थी। अपने आप को संभाल कर फोन उठाने में भी उसे वक्त लग रहा था। फोन उठाते ही बॉस की आवाज सुनाई पड़ी। वे नाराज हो रहे थे, इतनी देर फोन बजने से उन्होंने समझा कि सेक्रेटरी ने हुक उधुली की, पर उसे फोन पर पाकर वो शांत हुए। उन्हें भी कुछ बातों के लिए अफसोस था, इसके लिए सॉरी सर कहने लगी वो, पर उन्होंने भी सॉरी कहा और बताया कि उन्होंने पहली बार सेक्रेटरी को रखा है, इसलिए यहाँ से निकलते हुए भूल गए। अभी उसकी याद उन्हें उनकी बीवी ने दिलाई। उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी नई सेक्रेटरी कैसी है, तब उन्हें याद आया कि अरे तुम तो ऑफिस में अकेली होगी, और उन्होंने इस बात के लिए उससे काफ़ी सॉरी कहा। संयुक्ता ने इस ऑल राइट सर कहने के साथ ही काफ़ी तसल्ली भरी सांस ली। वो और कुछ कह पाती इसके पहले बॉस ने फोन रख दिया। अब उसकी नज़र घड़ी पर गई, 9:30 बज रहे थे। वो 4 घंटे सो रही थी और उस भयानक सपने में 2-4 कर रही थी। उसने फुर्ती से अपना पर्स उठाया और कंधे पे टांगा और निकल पड़ी। चपरासी पीछे पीछे उसके दफ्तर बंद करता रह गया। और इस तरह खत्म हुई संयुक्ता के ऑफिस के पहले दिन की जद्दोजहद। और इसी तरह ये कहानी भी खत्म होती है। प्यारे दोस्तों, आपने भी शायद इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस किया हो, अगर किया है तो हमारे साथ उसे साझा करिए। आपको ये कहानी कैसी लगी और मेरा प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप सभी का पूरे दिल से धन्यवाद है जो आपने मेरे इस प्रयास को सराहा। तो मिलते हैं फिर अगले शो में, जहाँ कुछ सुनहरी यादें आपके दिल के दरवाजे को खटखटाने को खड़ी हो। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से पूरे दिल से स्वागत है मेरे शो में, जिसका नाम है सुनहरी यादें मेरे यानी आभा के साथ। प्यारे दोस्तों, कहानी के पहले पार्ट में हमने ये देखा कि संयुक्ता और उसके जैसे न जाने कितने ही युवाओं के मन में कितनी उथल पुथल मचती है, कितने परेशान होते हैं अपनी नौकरी के पहले दिन, एकदम भूकंप। शायद कुछ ऐसा ही आपने भी एक्सपीरियंस किया हो, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। अब तक आपने सुना कि कैसे संयुक्ता ऑफिस में बोर हो रही थी, पर वो एकदम परफेक्ट सेक्रेटरी का कर्तव्य पूरा करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही उसे वो किस्सा भी याद आता है जहाँ उसकी फ्रेंड यानी रंभा को उसके बॉस की वाइफ ने ऑफिस से निकाला था शक के आधार पे। अब आगे सुनते हैं। संयुक्ता से हर गई, ना बाबा वो बस से ही आएगी जाएगी, बॉस गाड़ी में लिफ्ट देगा तो भी नहीं लेगी। लेकिन बॉस को मना कैसे करेगी, किसी उपाय से टालना पड़ेगा, पर फिलहाल वो तो बुरी तरह से बोर हो रही थी। फिर उसने फोन को देखा, दोनों फोन शालिनता के साथ चुप थे। जैसे शहर के सारे लोगों को मालूम पड़ गया था कि मिस्टर बजाज केबिन में नहीं है। उसका जी किया वो दरवाजे का पर्दा जरा खिसका कर शीशे के उस पार देखे कि हॉल में क्या हो रहा है। वो धीरे से दरवाजे के पास गई और वैसे ही किया। पूरे हॉल में मालूम चिल्लम पो मची हुई थी। शीशे के इस पार कोई आवाज नहीं थी, मगर लोगों के हिलते होंठ बता रहे थे कि वे बातें कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी चेयर पे बैठ के काम भी कर रहे थे, पर उनकी संख्या कम थी। सुबह आते हुए उसने जो व्यवस्थित और अनुशासित दफ्तर का माहौल देखा था, वो बिल्कुल बदला हुआ था। उनमें से कुछ बार बार केबिन की ओर उंगली दिखाकर एक दूसरे को कुछ बता रहे थे। क्या बता रहे होंगे? शायद कमरे में बॉस की सेक्रेटरी अकेली है, खूबसूरत है, ऐसी ही बातें करते होंगे। उसने धीरे से पर्दा छोड़ दिया। पर्दा अपने स्थान पर व्यवस्थित हो गया। हॉल की भीड़ बाहर ही छूट गई और वो केबिन में फिर से अकेली हो गई। कुछ देर चेयर को देखती रही, उसकी बाह पकड़कर खड़ी रही, फिर सोचा भाग जाऊं क्या यहाँ से, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा यहाँ रुकने का। फिर उसे याद आया कि उसने कैसे अपनी माँ को मनाया था। पार्थ अंकल ने तो इतना भी कहा था कि तुम्हें बॉस के साथ टूर पे जाना पड़ सकता है। इससे उसे कोई आपत्ति नहीं हुई, पर उसकी माँ थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही कुनमुनाई थी। संयुक्ता ने माँ को समझाया था और यकीन दिलाया था कि उनकी बेटी कोई कमजोर लड़की नहीं है, अपने सामने आए हर स्थिति का भली भांति वो निपटारा कर सकती है। दूसरे सभी के साथ उल्टी सीधी बात हो ही ये जरूरी तो नहीं है, वरना ऑफिस में सेक्रेटरी के पद पे लड़कियां होती ही नहीं, जबकि इस पद पर अधिकतर लड़कियां ही काम करती हैं। 5 बज गए, दफ्तर का समय खत्म हो गया, पर फोन की घंटी एक बार भी नहीं बजी। दफ्तर खाली होने लगा। उसने थोड़ा सा पर्दा खिसकाकर देखा, सभी एक बार केबिन को देखते, थोड़ा सा मुस्कुराते और मुड़कर चले जाते। उसने पर्दा छोड़ दिया। उन्हें इस तरह केबिन की तरफ मुस्कुराहट फेंक देखते हुए उसे थोड़ा घबराहट हुई। दिल एक बार असंभावित हुआ और धड़का, तभी दरवाजा खुला और चपरासी अंदर आ गया। आप नहीं जाएंगी? नहीं, साहब ने रुकने को कहा है, संयुक्ता ने कहा। इसके उत्तर पे चपरासी ने नीचा सर कर लिया और धीरे से मुस्कुराया और बाहर निकल गया। बाहर उसके टूल खिसकाने की आवाज बंद होते दरवाजे के अंदर आई, यानी वो तब तक रुकेगा जब तक वो रुकेगी। लेकिन सभी क्यों धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे? उनकी इस मुस्कुराहट का क्या अर्थ है? दिल एक बार फिर से धड़का, घबराहट थोड़ी और बढ़ी। संयुक्ता ने स्वयं को संभालने की कोशिश की, संयत होने की कोशिश की और फिर जाके चेयर पे बैठ गई। वो अकेली थोड़ी ही है, वह जब तक रुकेगी चपरासी भी रुकेगा। लेकिन चपरासी के रुकने के ख्याल से एक बार फिर डर गई। अगर कहीं चपरासी ही बदमाशी पे उतर आया तो? दिल जोर से धड़कने लगा। क्या करे वो, क्या चली जाए? उसका हाथ अपने पर्स की ओर बढ़ा लेकिन ठहर गया। बॉस ने रुकने को कहा था और आज पहला दिन है, पहले ही दिन अवज्ञा कर दे। लेकिन 5 बजने के बाद रुकना, वो सेक्रेटरी है, उसके दफ्तर के नियम बॉस से ज्यादा जरूरी हैं। तो क्या गलत बात भी मान ले वो? नहीं नहीं, ऐसा क्या होता है, उन्होंने रुकने को कहा है, हो सकता है किसी मीटिंग में हो, आकर तुरंत अपनी फाइल पे साइन करने लग जाए या कोई डिक्टेशन ही देने लग जाए, वरना रुकने को क्यों कहती? और वह इतनी जल्दी घबराने लगी, माँ को तो कितना समझाया था पर खुद का दिल चूहे सा। इसी उधेड़बुन में उसने आंखें बंद कर ली। वो बैठे बैठे थक भी गई थी और फिर चेयर पे अधलेटी होके वो कुछ सोचने लगी। वो बंद किए हुए आंखों से अजीब से डर से गुजर रही थी। उसकी सोच अनजाने डर से काफी परेशान हो रही थी। वे सोच जंगलियों की तरह अनवरत हो रहे थे। फिर वो सोचने लगी कि शायद ये उसका भ्रम हो। तभी अचानक उसे लगा कि कोई आवाज दे रहा है कहीं दूर से, पर वो आवाज दूर से नहीं थी। उसकी आंखें खुल गई। चपरासी उसे आवाज दे रहा था। मैडम, फोन देरी से बज रहा है। फोन की घंटी भी बज रही थी। लगातार घंटी बजने की आवाज सुन चपरासी अंदर आया कि मैडम फोन क्यों नहीं उठा रही है। उसे सोता पाकर उसे वो आवाज देने लग गया। वो पसीने से भीगी हुई थी, सांसें तेज भाग रही थी। अपने आप को संभाल कर फोन उठाने में भी उसे वक्त लग रहा था। फोन उठाते ही बॉस की आवाज सुनाई पड़ी। वे नाराज हो रहे थे। इतनी देर फोन बजने से उन्होंने समझा कि सेक्रेटरी ने हुक उधुली की, पर उसे फोन पर पाकर वो शांत हुए। उन्हें भी कुछ बातों के लिए अफसोस था। इसके लिए सॉरी सर कहने लगी वो, पर उन्होंने भी सॉरी कहा और बताया कि उन्होंने पहली बार सेक्रेटरी को रखा है, इसलिए यहाँ से निकलते हुए भूल गए। अभी उसकी याद उन्हें उनकी बीवी ने दिलाई। उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी नई सेक्रेटरी कैसी है, तब उन्हें याद आया कि अरे तुम तो ऑफिस में अकेली होगी, और उन्होंने इस बात के लिए उससे काफ़ी सॉरी कहा। संयुक्ता ने इस ऑल राइट सर कहने के साथ ही काफ़ी तसल्ली भरी सांस ली। वो और कुछ कह पाती इसके पहले बॉस ने फोन रख दिया। अब उसकी नज़र घड़ी पर गई, 9:30 बज रहे थे। वो 4 घंटे सो रही थी और उस भयानक सपने में 2-4 कर रही थी। उसने फुर्ती से अपना पर्स उठाया और कंधे पे टांगा और निकल पड़ी। चपरासी पीछे पीछे उसके दफ्तर बंद करता रह गया। और इस तरह खत्म हुई संयुक्ता के ऑफिस के पहले दिन की जद्दोजहद। और इसी तरह ये कहानी भी खत्म होती है। प्यारे दोस्तों, आपने भी शायद इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस किया हो, अगर किया है तो हमारे साथ उसे साझा करिए। आपको ये कहानी कैसी लगी और मेरा प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप सभी का पूरे दिल से धन्यवाद है जो आपने मेरे इस प्रयास को सराहा। तो मिलते हैं फिर अगले शो में, जहाँ कुछ सुनहरी यादें आपके दिल के दरवाजे को खटखटाने को खड़ी हो। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से पूरे दिल से स्वागत है मेरे शो में, जिसका नाम है सुनहरी यादें मेरे यानी आभा के साथ। प्यारे दोस्तों, कहानी के पहले पार्ट में हमने ये देखा कि संयुक्ता और उसके जैसे न जाने कितने ही युवाओं के मन में कितनी उथल पुथल मचती है, कितने परेशान होते हैं अपनी नौकरी के पहले दिन, एकदम भूकंप। शायद कुछ ऐसा ही आपने भी एक्सपीरियंस किया हो, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। अब तक आपने सुना कि कैसे संयुक्ता ऑफिस में बोर हो रही थी, पर वो एकदम परफेक्ट सेक्रेटरी का कर्तव्य पूरा करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही उसे वो किस्सा भी याद आता है जहां उसकी फ्रेंड यानी रंभा को उसके बॉस की वाइफ ने ऑफिस से निकाला था शक के आधार पे। अब आगे सुनते हैं। संयुक्ता से हर गई, ना बाबा वो बस से ही आएगी जाएगी, बॉस गाड़ी में लिफ्ट देगा तो भी नहीं लेगी। लेकिन बॉस को मना कैसे करेगी, किसी उपाय से टालना पड़ेगा, पर फिलहाल वो तो बुरी तरह से बोर हो रही थी। फिर उसने फोन को देखा, दोनों फोन शालीनता के साथ चुप थे। जैसे शहर के सारे लोगों को मालूम पड़ गया था कि मिस्टर बजाज केबिन में नहीं है। उसका जी किया वो दरवाजे का पर्दा जरा खिसकाकर शीशे की उस पार देखे कि हॉल में क्या हो रहा है। वो धीरे से दरवाजे के पास गई और वैसे ही किया। पूरे हॉल में मालूम चिल्लम पो मची हुई थी। शीशे के इस पार कोई आवाज नहीं थी, मगर लोगों के हिलते होंठ बता रहे थे कि वे बातें कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी चेयर पे बैठ के काम भी कर रहे थे, पर उनकी संख्या कम थी। सुबह आते हुए उसने जो व्यवस्थित और अनुशासित दफ्तर का माहौल देखा था वो बिल्कुल बदला हुआ था। उनमें से कुछ बार बार केबिन की ओर उंगली दिखाकर एक दूसरे को कुछ बता रहे थे। क्या बता रहे होंगे, शायद कमरे में बॉस की सेक्रेटरी अकेली है, खूबसूरत है, ऐसी ही बातें करते होंगे। उसने धीरे से पर्दा छोड़ दिया। पर्दा अपने स्थान पर व्यवस्थित हो गया। हॉल की भीड़ बाहर ही छूट गई और वो केबिन में फिर से अकेली हो गई। कुछ देर चेयर को देखती रही, उसकी बाह पकड़कर खड़ी रही, फिर सोचा भाग जाऊं क्या यहाँ से, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा यहाँ रुकने का। फिर उसे याद आया कि उसने कैसे अपनी माँ को मनाया था। पार्थ अंकल ने तो इतना भी कहा था कि तुम्हें बॉस के साथ टूर पे जाना पड़ सकता है। इससे उसे कोई आपत्ति नहीं हुई, पर उसकी माँ थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही गुनगुनाई थी। संयुक्ता ने माँ को समझाया था और यकीन दिलाया था कि उनकी बेटी कोई कमज़ोर लड़की नहीं है, अपने सामने आए हर स्थिति का भली भांति वो निपटारा कर सकती है। दूसरे सभी के साथ उल्टी सीधी बात हो ही ये ज़रूरी तो नहीं है, वरना ऑफिस में सेक्रेटरी के पद पे लड़कियां होती ही नहीं, जबकि इस पद पर अधिकतर लड़कियां ही काम करती हैं। 5 बज गए, दफ्तर का समय खत्म हो गया, पर फोन की घंटी एक बार भी नहीं बजी। दफ्तर खाली होने लगा। उसने थोड़ा सा पर्दा खिसका कर देखा, सभी एक बार केबिन को देखते, थोड़ा सा मुस्कुराते और मुड़कर चले जाते। उसने पर्दा छोड़ दिया। उन्हें इस तरह केबिन की तरफ मुस्कुराहट फेंक देखते हुए उसे थोड़ा घबराहट हुई। दिल एक बार असंभावित हुआ और धड़का। तभी दरवाजा खुला और चपरासी अंदर आ गया। आप नहीं जाएंगी?
नहीं, साहब ने रुकने को कहा है, संयुक्ता ने कहा।
इसके उत्तर पर चपरासी ने नीचा सर कर लिया और धीरे से मुस्कुराया और बाहर निकल गया। बाहर उसके टूल खिसकाने की आवाज बंद होते दरवाजे के अंदर आई, यानी वो तब तक रुकेगा जब तक वो रुकेगी। लेकिन सभी क्यों धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे? उनकी इस मुस्कुराहट का क्या अर्थ है? दिल एक बार फिर से धड़का, घबराहट थोड़ी और बढ़ी और बढ़ी। संयुक्ता ने स्वयं को संभालने की कोशिश की, संयत होने की कोशिश की और फिर जाके चेयर पे बैठ गई। वो अकेली थोड़ी ही है, वह जब तक रुकेगी चपरासी भी रुकेगा। लेकिन चपरासी के रुकने के ख्याल से एक बार फिर डर गई। अगर कहीं चपरासी ही बदमाशी पे उतर आया तो? दिल जोर से धड़कने लगा। क्या करे वो, क्या चली जाए? उसका हाथ अपने पर्स की ओर बढ़ा लेकिन ठहर गया। बॉस ने रुकने को कहा था और आज पहला दिन है, पहले ही दिन अवज्ञा कर दे। लेकिन 5 बजने के बाद रुकना, वो सेक्रेटरी है, उसके दफ्तर के नियम बॉस से ज्यादा जरूरी है, तो क्या गलत बात भी मान ले वो?
नहीं नहीं ऐसा क्या होता है, उन्होंने रुकने को कहा है, हो सकता है किसी मीटिंग में हो, आकर तुरंत अपनी फाइल पे साइन करने लग जाए या कोई डिक्टेशन ही देने लग जाए, वरना रुकने को क्यों कहते? और वह इतनी जल्दी घबराने लगी, माँ को तो कितना समझाया था पर खुद का दिल चूहे सा। इसी उधेड़बुन में उसने आंखें बंद कर ली। वो बैठे बैठे थक भी गई थी और फिर चेयर पे अधलेटी होके वो कुछ सोचने लगी। वो बंद किए हुए आंखों से अजीब से डर से गुजर रही थी। उसकी सोच अनजाने डर से काफी परेशान हो रही थी। वे सोच जंगलियों की तरह अनवरत हो रहे थे। फिर वो सोचने लगी कि शायद ये उसका भ्रम हो। तभी अचानक उसे लगा कि कोई आवाज दे रहा है कहीं दूर से, पर वो आवाज दूर से नहीं थी। उसकी आंखें खुल गई। चपरासी उसे आवाज दे रहा था। मैडम, फोन देरी से बज रहा है। फोन की घंटी भी बज रही थी। लगातार घंटी बजने की आवाज सुन चपरासी अंदर आया कि मैडम फोन क्यों नहीं उठा रही है। उसे सोता पाकर उसे वो आवाज देने लग गया। वो पसीने से भीगी हुई थी, सांसें तेज भाग रही थी। अपने आप को संभाल कर फोन उठाने में भी उसे वक्त लग रहा था। फोन उठाते ही बॉस की आवाज सुनाई पड़ी। वे नाराज हो रहे थे। इतनी देर फोन बजने से उन्होंने समझा कि सेक्रेटरी ने हुक उदुली की, पर उसे फोन पर पाकर वो शांत हुए। उन्हें भी कुछ बातों के लिए अफसोस था। इसके लिए सॉरी सर कहने लगी वो, पर उन्होंने भी सॉरी कहा और बताया कि उन्होंने पहली बार सेक्रेटरी को रखा है, इसलिए यहाँ से निकलते हुए भूल गए। अभी उसकी याद उन्हें उनकी बीवी ने दिलाई। उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी नई सेक्रेटरी कैसी है, तब उन्हें याद आया कि अरे तुम तो ऑफिस में अकेली होगी, और उन्होंने इस बात के लिए उससे काफी सॉरी कहा। संयुक्ता ने इस ऑलराइट सर कहने के साथ ही काफी तसल्ली भरी सांस ली। वो और कुछ कह पाती इसके पहले बॉस ने फोन रख दिया। अब उसकी नजर घड़ी पर गई, 9:30 बज रहे थे। वो 4 घंटे सो रही थी और उस भयानक सपने में 2-4 कर रही थी। उसने फुर्ती से अपना पर्स उठाया और कंधे पर टांगा और निकल पड़ी। चपरासी पीछे पीछे उसके दफ्तर बंद करता रह गया और इस तरह खत्म हुई संयुक्ता के ऑफिस के पहले दिन की जद्दोजहद। और इसी तरह ये कहानी भी खत्म होती है। प्यारे दोस्तों, आपने भी शायद इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस किया हो, अगर किया है तो हमारे साथ उसे साझा करिए। आपको ये कहानी कैसी लगी और मेरा प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप सभी का पूरे दिल से धन्यवाद है जो आपने मेरे इस प्रयास को सराहा। तो मिलते हैं फिर अगले शो में, जहाँ कुछ सुनहरी यादें आपके दिल के दरवाजे को खटखटाने को खड़ी हो। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से पूरे दिल से स्वागत है मेरे शो में, जिसका नाम है सुनहरी यादें मेरे यानी आभा के साथ। प्यारे दोस्तों, कहानी के पहले पार्ट में हमने ये देखा कि संयुक्ता और उसके जैसे न जाने कितने ही युवाओं के मन में कितनी उथल पुथल मचती है, कितने परेशान होते हैं अपनी नौकरी के पहले दिन एकदम भूकंप। शायद कुछ ऐसा ही आपने भी एक्सपीरियंस किया हो, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। अब तक आपने सुना कि कैसे संयुक्ता ऑफिस में बोर हो रही थी, पर वो एकदम परफेक्ट सेक्रेटरी का कर्तव्य पूरा करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही उसे वो किस्सा भी याद आता है जहां उसकी फ्रेंड यानी रंभा को उसके बॉस की वाइफ ने ऑफिस से निकाला था शक के आधार पे। अब आगे सुनते हैं। संयुक्ता से हर गई, ना बाबा वो बस से ही आएगी जाएगी, बॉस गाड़ी में लिफ्ट देगा तो भी नहीं लेगी। लेकिन बॉस को मना कैसे करेगी, किसी उपाय से टालना पड़ेगा। पर फिलहाल वो तो बुरी तरह से बोर हो रही थी। फिर उसने फोन को देखा, दोनों फोन शालीनता के साथ चुप थे। जैसे शहर के सारे लोगों को मालूम पड़ गया था कि मिस्टर बजाज केबिन में नहीं है। उसका जी किया वो दरवाजे का पर्दा जरा खिसका कर शीशे के उस पार देखे कि हॉल में क्या हो रहा है। वो धीरे से दरवाजे के पास गई और वैसे ही किया। पूरे हॉल में मालूम चिल्लम पो मची हुई थी। शीशे के इस पार कोई आवाज नहीं थी, मगर लोगों के हिलते होंठ बता रहे थे कि वे बातें कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी चेयर पे बैठ के काम भी कर रहे थे, पर उनकी संख्या कम थी। सुबह आते हुए उसने जो व्यवस्थित और अनुशासित दफ्तर का माहौल देखा था वो बिल्कुल बदला हुआ था। उनमें से कुछ बार बार केबिन की ओर उंगली दिखाकर एक दूसरे को कुछ बता रहे थे। क्या बता रहे होंगे? शायद कमरे में बॉस की सेक्रेटरी अकेली है, खूबसूरत है, ऐसी ही बातें करते होंगे। उसने धीरे से पर्दा छोड़ दिया। पर्दा अपने स्थान पर व्यवस्थित हो गया। हॉल की भीड़ बाहर ही छूट गई और वो केबिन में फिर से अकेली हो गई। कुछ देर चेयर को देखती रही, उसकी बाह पकड़कर खड़ी रही, फिर सोचा भाग जाऊं क्या यहाँ से, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा यहाँ रुकने का। फिर उसे याद आया कि उसने कैसे अपनी माँ को मनाया था। पार्थ अंकल ने तो इतना भी कहा था कि तुम्हें बॉस के साथ टूर पे जाना पड़ सकता है। इससे उसे कोई आपत्ति नहीं हुई, पर उसकी माँ थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही गुनगुनाई थी। संयुक्ता ने माँ को समझाया था और यकीन दिलाया था कि उनकी बेटी कोई कमज़ोर लड़की नहीं है, अपने सामने आए हर स्थिति का भली भांति वो निपटारा कर सकती है। दूसरे सभी के साथ उल्टी सीधी बात हो ही ये ज़रूरी तो नहीं है, वरना ऑफिस में सेक्रेटरी के पद पे लड़कियां होती ही नहीं, जबकि इस पद पर अधिकतर लड़कियां ही काम करती हैं। 5 बज गए, दफ्तर का समय खत्म हो गया, पर फोन की घंटी एक बार भी नहीं बजी। दफ्तर खाली होने लगा। उसने थोड़ा सा पर्दा खिसकाकर देखा, सभी एक बार केबिन को देखते, थोड़ा सा मुस्कुराते और मुड़कर चले जाते। उसने पर्दा छोड़ दिया। उन्हें इस तरह केबिन की तरफ मुस्कुराहट फेंक देखते हुए उसे थोड़ा घबराहट हुई। दिल एक बार असंभावित हुआ और धड़का। तभी दरवाजा खुला और चपरासी अंदर आ गया। आप नहीं जाएंगी?
नहीं, साहब ने रुकने को कहा है, संयुक्ता ने कहा।
इसके उत्तर पे चपरासी ने नीचा सर कर लिया और धीरे से मुस्कुराया और बाहर निकल गया। बाहर उसके टूल खिसकाने की आवाज बंद होते दरवाजे के अंदर आई, यानी वो तब तक रुकेगा जब तक वो रुकेगी। लेकिन सभी क्यों धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे? उनकी इस मुस्कुराहट का क्या अर्थ है? दिल एक बार फिर से धड़का, घबराहट थोड़ी और बढ़ी और बढ़ी। संयुक्ता ने स्वयं को संभालने की कोशिश की, संयत होने की कोशिश की और फिर जाके चेयर पे बैठ गई। वो अकेली थोड़ी ही है, वह जब तक रुकेगी चपरासी भी रुकेगा। लेकिन चपरासी के रुकने के ख्याल से एक बार फिर डर गई। अगर कहीं चपरासी ही बदमाशी पे उतर आया तो? दिल जोर से धड़कने लगा। क्या करे वो, क्या चली जाए? उसका हाथ अपने पर्स की ओर बढ़ा लेकिन ठहर गया। बॉस ने रुकने को कहा था और आज पहला दिन है, पहले ही दिन अवज्ञा कर दे? लेकिन 5 बजने के बाद रुकना, वो सेक्रेटरी है, उसके दफ्तर के नियम बॉस से ज्यादा जरूरी है, तो क्या गलत बात भी मान ले वो?
नहीं नहीं, ऐसा क्या होता है, उन्होंने रुकने को कहा है, हो सकता है किसी मीटिंग में हो, आकर तुरंत अपनी फाइल पे साइन करने लग जाए या कोई डिक्टेशन ही देने लग जाए, वरना रुकने को क्यों कहते? और वह इतनी जल्दी घबराने लगी, माँ को तो कितना समझाया था पर खुद का दिल चूहे सा। इसी उधेड़बुन में उसने आंखें बंद कर ली। वो बैठे बैठे थक भी गई थी और फिर चेयर पे अधलेटी होके वो कुछ सोचने लगी। वो बंद किए हुए आंखों से अजीब से डर से गुजर रही थी। उसकी सोच अनजाने डर से काफी परेशान हो रही थी। वे सोच जंगलियों की तरह अनवरत हो रहे थे। फिर वो सोचने लगी कि शायद ये उसका भ्रम हो। तभी अचानक उसे लगा कि कोई आवाज दे रहा है कहीं दूर से, पर वो आवाज दूर से नहीं थी। उसकी आंखें खुल गई। चपरासी उसे आवाज दे रहा था। मैडम, फोन देरी से बज रहा है। फोन की घंटी भी बज रही थी। लगातार घंटी बजने की आवाज सुन चपरासी अंदर आया कि मैडम फोन क्यों नहीं उठा रही है। उसे सोता पाकर उसे वो आवाज देने लग गया। वो पसीने से भीगी हुई थी, सांसें तेज भाग रही थी। अपने आप को संभाल कर फोन उठाने में भी उसे वक्त लग रहा था। फोन उठाते ही बॉस की आवाज सुनाई पड़ी। वे नाराज हो रहे थे। इतनी देर फोन बजने से उन्होंने समझा कि सेक्रेटरी ने हुक उदुली की, पर उसे फोन पर पाकर वो शांत हुए। उन्हें भी कुछ बातों के लिए अफसोस था। इसके लिए सॉरी सर कहने लगी वो, पर उन्होंने भी सॉरी कहा और बताया कि उन्होंने पहली बार सेक्रेटरी को रखा है, इसलिए यहाँ से निकलते हुए वो भूल गए। अभी उसकी याद उन्हें उनकी बीवी ने दिलाई। उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी नई सेक्रेटरी कैसी है। तब उन्हें याद आया कि अरे, तुम तो ऑफिस में अकेली होगी, और उन्होंने इस बात के लिए उससे
काफी सॉरी कहा। संयुक्ता ने इस ऑलराइट सर कहने के साथ ही काफी तसल्ली भरी सांस ली। वो और कुछ कह पाती इसके पहले बॉस ने फोन रख दिया। अब उसकी नजर घड़ी पर गई, 9:30 बज रहे थे। वो 4 घंटे सो रही थी और उस भयानक सपने में दो चार कर रही थी। उसने फुर्ती से अपना पर्स उठाया और कंधे पे टांगा और निकल पड़ी। चपरासी पीछे पीछे उसके दफ्तर बंद करता रह गया और इस तरह खत्म हुई संयुक्ता के ऑफिस के पहले दिन की जद्दोजहद। और इसी तरह ये कहानी भी खत्म होती है। प्यारे दोस्तों, आपने भी शायद इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस किया हो। अगर किया है तो हमारे साथ उसे साझा करिए। आपको ये कहानी कैसी लगी और मेरा प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप सभी का पूरे दिल से धन्यवाद है जो आपने मेरे इस प्रयास को सराहा। तो मिलते हैं फिर अगले शो में, जहाँ कुछ सुनहरी यादें आपके दिल के दरवाजे को खटखटाने को खड़ी हों। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से पूरे दिल से स्वागत है मेरे शो में, जिसका नाम है सुनहरी यादें मेरे यानी आभा के साथ। प्यारे दोस्तों, कहानी के पहले पार्ट में हमने ये देखा कि संयुक्ता और उसके जैसे न जाने कितने ही युवाओं के मन में कितनी उथल पुथल मचती है, कितने परेशान होते हैं अपनी नौकरी के पहले दिन, एकदम भूकंप। शायद कुछ ऐसा ही आपने भी एक्सपीरियंस किया हो, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। अब तक आपने सुना कि कैसे संयुक्ता ऑफिस में बोर हो रही थी, पर वो एकदम परफेक्ट सेक्रेटरी का कर्तव्य पूरा करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही उसे वो किस्सा भी याद आता है जहाँ उसकी फ्रेंड यानी रंभा को उसके बॉस की वाइफ ने ऑफिस से निकाला था शक के आधार पे। अब आगे सुनते हैं। संयुक्ता से हर गई, ना बाबा वो बस से ही आएगी जाएगी, बॉस गाड़ी में लिफ्ट देगा तो भी नहीं लेगी। लेकिन बॉस को मना कैसे करेगी, किसी उपाय से टालना पड़ेगा। पर फिलहाल वो तो बुरी तरह से बोर हो रही थी। फिर उसने फोन को देखा, दोनों फोन शालिनता के साथ चुप थे। जैसे शहर के सारे लोगों को मालूम पड़ गया था कि मिस्टर बजाज केबिन में नहीं है। उसका जी किया वो दरवाजे का पर्दा जरा खिसका कर शीशे के उस पार देखे कि हॉल में क्या हो रहा है। वो धीरे से दरवाजे के पास गई और वैसे ही किया। पूरे हॉल में मालूम चिल्लम पो मची हुई थी। शीशे की इस पार कोई आवाज नहीं थी, मगर लोगों के हिलते होंठ बता रहे थे कि वे बातें कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी चेयर पे बैठ के काम भी कर रहे थे, पर उनकी संख्या कम थी। सुबह आते हुए उसने जो व्यवस्थित और अनुशासित दफ्तर का माहौल देखा था वो बिल्कुल बदला हुआ था। उनमें से कुछ बार बार केबिन की ओर उंगली दिखाकर एक दूसरे को कुछ बता रहे थे। क्या बता रहे होंगे? शायद कमरे में बॉस की सेक्रेटरी अकेली है, खूबसूरत है, ऐसी ही बातें करते होंगे। उसने धीरे से पर्दा छोड़ दिया। पर्दा अपने स्थान पर व्यवस्थित हो गया। हॉल की भीड़ बाहर ही छूट गई और वो केबिन में फिर से अकेली हो गई। कुछ देर चेयर को देखती रही, उसकी बाह पकड़कर खड़ी रही, फिर सोचा भाग जाऊं क्या यहाँ से, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा यहाँ रुकने का। फिर उसे याद आया कि उसने कैसे अपनी माँ को मनाया था। पार्थ अंकल ने तो इतना भी कहा था कि तुम्हें बॉस के साथ टूर पे जाना पड़ सकता है। इससे उसे कोई आपत्ति नहीं हुई, पर उसकी माँ थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही गुनगुनाई थी। संयुक्ता ने माँ को समझाया था और यकीन दिलाया था कि उनकी बेटी कोई कमजोर लड़की नहीं है, अपने सामने आए हर स्थिति का भली भांति वो निपटारा कर सकती है। दूसरे सभी के साथ उल्टी सीधी बात हो ही, ये जरूरी तो नहीं है, वरना ऑफिस में सेक्रेटरी के पद पे लड़कियां होती ही नहीं, जबकि इस पद पर अधिकतर लड़कियां ही काम करती हैं। 5 बज गए, दफ्तर का समय खत्म हो गया, पर फोन की घंटी एक बार भी नहीं बजी। दफ्तर खाली होने लगा। उसने थोड़ा सा पर्दा खिसकाकर देखा, सभी एक बार केबिन को देखते, थोड़ा सा मुस्कुराते और मुड़कर चले जाते। उसने पर्दा छोड़ दिया। उन्हें इस तरह केबिन की तरफ मुस्कुराहट फेंक देखते हुए उसे थोड़ा घबराहट हुई। दिल एक बार असंभावित हुआ और धड़का। तभी दरवाजा खुला और चपरासी अंदर आ गया। आप नहीं जाएंगी? नहीं, साहब ने रुकने को कहा है, संयुक्ता ने कहा। इसके उत्तर पर चपरासी ने नीचा सर कर लिया और धीरे से मुस्कुराया और बाहर निकल गया। बाहर उसके टूल खिसकाने की आवाज बंद होते दरवाजे के अंदर आई, यानी वो तब तक रुकेगा जब तक वो रुकेगी। लेकिन सभी क्यों धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे? उनकी इस मुस्कुराहट का क्या अर्थ है? दिल एक बार फिर से धड़का, घबराहट थोड़ी और बढ़ी और बढ़ी। संयुक्ता ने स्वयं को संभालने की कोशिश की, संयत होने की कोशिश की और फिर जाके चेयर पे बैठ गई। वो अकेली थोड़ी ही है, वह जब तक रुकेगी चपरासी भी रुकेगा। लेकिन चपरासी के रुकने के ख्याल से एक बार फिर डर गई। अगर कहीं चपरासी ही बदमाशी पे उतर आया तो? दिल जोर से धड़कने लगा। क्या करे वो, क्या चली जाए? उसका हाथ अपने पर्स की ओर बढ़ा लेकिन ठहर गया। बॉस ने रुकने को कहा था और आज पहला दिन है, पहले ही दिन अवज्ञा कर दे? लेकिन 5 बजने के बाद रुकना, वो सेक्रेटरी है, उसके दफ्तर के नियम बॉस से ज्यादा जरूरी है, तो क्या गलत बात भी मान ले वो? नहीं नहीं, ऐसा क्या होता है, उन्होंने रुकने को कहा है, हो सकता है किसी मीटिंग में हो, आकर तुरंत अपनी फाइल पे साइन करने लग जाए या कोई डिक्टेशन ही देने लग जाए, वरना रुकने को क्यों कहती? और वह इतनी जल्दी घबराने लगी, माँ को तो कितना समझाया था, पर खुद का दिल चूहे सा। इसी उधेड़बुन में उसने आंखें बंद कर ली। वो बैठे बैठे थक भी गई थी और फिर चेयर पे अधलेटी होके वो कुछ सोचने लगी। वो बंद किए हुए आंखों से अजीब से डर से गुजर रही थी। उसकी सोच अनजाने डर से काफी परेशान हो रही थी। वे सोच जंगलियों की तरह अनवरत हो रहे थे। फिर वो सोचने लगी कि शायद ये उसका भ्रम हो। तभी अचानक उसे लगा कि कोई आवाज दे रहा है कहीं दूर से, पर वो आवाज दूर से नहीं थी। उसकी आंखें खुल गई। चपरासी उसे आवाज दे रहा था। मैडम, फोन देरी से बज रहा है। फोन की घंटी भी बज रही थी। लगातार घंटी बजने की आवाज सुन चपरासी अंदर आया कि मैडम फोन क्यों नहीं उठा रही है। उसे सोता पाकर उसे वो आवाज देने लग गया। वो पसीने से भीगी हुई थी, सांसें तेज भाग रही थी। अपने आप को संभाल कर फोन उठाने में भी उसे वक्त लग रहा था। फोन उठाते ही बॉस की आवाज सुनाई पड़ी। वे नाराज हो रहे थे। इतनी देर फोन बजने से उन्होंने समझा कि सेक्रेटरी ने हुक उधुली की, पर उसे फोन पर पाकर वो शांत हुए। उन्हें भी कुछ बातों के लिए अफसोस था। इसके लिए सॉरी सर कहने लगी वो, पर उन्होंने भी सॉरी कहा और बताया कि उन्होंने पहली बार सेक्रेटरी को रखा है, इसलिए यहाँ से निकलते हुए भूल गए। अभी उसकी याद उन्हें उनकी बीवी ने दिलाई। उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी नई सेक्रेटरी कैसी है, तब उन्हें याद आया, कह रहे तुम तो ऑफिस में अकेली होगी, और उन्होंने इस बात के लिए उससे काफ़ी सॉरी कहा। संयुक्ता ने इस ऑल राइट सर कहने के साथ ही काफ़ी तसल्ली भरी सांस ली। वो और कुछ कह पाती इसके पहले बॉस ने फोन रख दिया। अब उसकी नज़र घड़ी पर गई, 9:30 बज रहे थे। वो 4 घंटे सो रही थी और उस भयानक सपने में 2-4 कर रही थी। उसने फुर्ती से अपना पर्स उठाया और कंधे पे टांगा और निकल पड़ी। चपरासी पीछे पीछे उसके दफ्तर बंद करता रह गया और इस तरह खत्म हुई संयुक्ता के ऑफिस के पहले दिन की जद्दोजहद। और इसी तरह ये कहानी भी खत्म होती है। प्यारे दोस्तों, आपने भी शायद इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस किया हो, अगर किया है तो हमारे साथ उसे साझा करिए। आपको ये कहानी कैसी लगी और मेरा प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप सभी का पूरे दिल से धन्यवाद है जो आपने मेरे इस प्रयास को सराहा। तो मिलते हैं फिर अगले शो में, जहाँ कुछ सुनहरी यादें आपके दिल के दरवाजे को खटखटाने को खड़ी हो। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।